नमस्कार। आज हम श्री राम शर्मा आचार्य जी के लेखन के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं, आत्मस्वरूप की पहचान का दूसरा अध्याय। और इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं क्या हूँ
जी?
ये कोई सिर्फ दिमागी पहेली नहीं है ना, ये तो खुद को सच में जानने की एक प्यास है।
बिल्कुल।
शास्त्र भी कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेध्या न बहु न श्रुतेन। मतलब ये आत्मा सिर्फ सुनने या सोचने या बातें करने से नहीं मिलती।
सही कहा, ये अंश हमें बस किताबी ज्ञान से आगे अनुभव के स्तर पर उतरने को कहता है।
हाँ,
ये समझने को कि आत्मा शरीर से कैसे अलग है, सूक्ष्म है, जैसे पानी पर तेल रहता है ना,
जी,
या लकड़ी ऊपर आ जाती है,
जी हाँ,
वैसे ही आत्मा भी शरीर में होकर भी उससे ऊपर उठने की, स्वतंत्र होने की कोशिश में रहती है। तो ये महसूस करने की बात है ज्यादा।
और अक्सर हम सबके अंदर एक बेचैनी सी रहती है ना, पता नहीं क्यों मन शांत नहीं होता।
हाँ बिल्कुल।
लेखक ने वो कस्तूरी मृग वाला उदाहरण क्या खूब दिया है।
हाँ,
तो सटीक है
कि वो बेचारा हिरन खुशबू के पीछे भागता फिरता है और कस्तूरी वो तो उसकी अपनी नाभि में है।
बिल्कुल।
और हम इंसान भी तो शायद ऐसे ही हैं।
हाँ।
खुशी शांति सब बाहर ढूंढ रहे हैं, चीजों में, लोगों में।
हाँ।
क्योंकि अपने अंदर जो आनंद का झरना है उसका मतलब एहसास ही नहीं हुआ कभी।
सही बात है।
और कमाल की बात यह है कि कई बार बहुत समझदार लोग, जिन्हें हम बुद्धिमान मानते हैं,
जी,
वो भी अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। मैं मतलब ये शरीर,
यही यही तो आम धारणा है।
और फिर सारा ध्यान किस पर जाता है?
भौतिक सुख सुविधाएं, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस।
हाँ, इन सबको बेहतर बनाने में आत्मज्ञान की तरफ ध्यान वो कम ही जाता है। लेखक यहाँ साफ कहते हैं कि ये जो बाहरी कर्म है, यज्ञ, तप, दान वगैरह,
हाँ, जो हम अक्सर धर्म के नाम पर करते हैं,
जी, वो सामाजिक रूप से अच्छे हो सकते हैं, उनसे पुण्य भी शायद मिलता हो,
जी,
पर उनसे सीधे आत्मा की पहचान वो नहीं होती।
क्यों क्यों नहीं होते?
क्योंकि आत्मा इन सब स्थूल चीजों से, इन कर्मकांडों से बहुत परे है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, वो अंदर की चीज है।
अच्छा।
तो अगर बाहर रास्ता नहीं है तो फिर रास्ता है कहाँ? अंदर कैसे जाएं? आत्मदर्शन का तरीका क्या है?
रास्ता पूरी तरह से भीतरी है,
और साधन भी कहीं बाहर से नहीं लाने,
वो भी अंदर ही है।
बिल्कुल, हमारा अपना आंतरिक सिस्टम, चित्त है, मन है, बुद्धि है, अंतःकरण जिसे कहते हैं, यात्रा अपने ही मन की दुनिया में, मानस लोक में उतर कर करनी है। और इसके लिए माहौल कैसा चाहिए? एकांत, शांत जगह, और शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है, शिथिल, ताकि शरीर की कोई तकलीफ ध्यान ना भटकाए।
ठीक है, तो एकांत में बैठ गए, शरीर शांत कर लिया।
जी,
अब इस साधना का, इस भीतरी यात्रा का मुख्य अभ्यास क्या है, करना क्या है?
फोकस, सारा फोकस सिर्फ एक विचार पे टिकाना है,
मैं,
हाँ, मैं पर। और कल्पना करनी है, विजुलाइज करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक अलग स्वतंत्र सत्ता हूँ, अविनाशी,
अविनाशी,
हाँ, जिसका नाश न हो, अनंत ऊर्जा वाली, जैसे सूरज चमकता है ना, वैसी प्रकाशमान चेतना।
अच्छा।
और ये सोचना है कि मैं केंद्र में हूँ, ब्रह्मांड का केंद्र, और मेरा जो संसार है, मेरी परिस्थितियां, लोग, चीजें, वो सब मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर।
ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है कि मैं केंद्र हूं और सब मेरे इर्द गिर्द हैं,
है ना? इसमें भाव ये है कि मैं उनसे बंधा नहीं हूं, मैं उनका संचालन कर रहा हूं अपनी चेतना की शक्ति से। लेखक ने लॉर्ड टेनिसन का जिक्र भी किया है, वो अपना नाम धीरे धीरे दोहराते थे और उससे उन्हें एकाग्रता में मदद मिलती थी। तो मैं पर ध्यान टिकाने के लिए ये भी एक तरीका हो सकता है।
लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये सोचना कि मैं केंद्र हूं, कैसे अहंकार नहीं बढ़ेगा? मतलब मैं ही सब कुछ हूं वाली भावना।
ये सवाल बहुत वाजिब है। यहाँ केंद्र होने का मतलब वो वाला अहंकार नहीं है, यहाँ मतलब है अपने अनुभव के स्रोत को पहचानना, वो चेतना जो सब कुछ अनुभव कर रही है। ये समझना कि अनुभव करने वाला मैं उन परिस्थितियों से अलग है, उनका साक्षी है बस।
मतलब डिटैचमेंट।
हाँ बिल्कुल, फोकस डिटैचमेंट पर है, खुद को दूसरों से बड़ा समझने पर नहीं। और इसी समझ को गहरा करने के लिए वो दूसरा प्रयोग है, मरने की कल्पना वाला।
हाँ हाँ वो वाला, वो तो सच में सोचने पर मजबूर करता है
ना? कोशिश करके देखिए, आप अपने शरीर को मरा हुआ शायद देख लें कल्पना में।
हाँ वो तो हो सकता है,
पर क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं मर गया हूँ?
नहीं, मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे मैं तो कहीं और से उस मरे हुए शरीर को देख रहा है।
एग्जैक्टली, यही यही आत्मा की अमरता का एक भीतरी प्रमाण है,
जो किसी और के कहने से नहीं अपने अनुभव से मिलता है।
फिर कल्पना करनी है कि आत्मा कैसी है। उसे न आकाश गला सकता, न हवा सुखा सकती, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न धरती सोख सकती है।
अच्छे द्योयम अधायो अयम, गीता वाला श्लोक।
जी बिल्कुल वही। ये काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, ये अविनाशी तत्व है।
तो मान लीजिए कोई इस तरह से अनुभव करने लगता है खुद को शरीर से अलग एक अविनाशी चेतना के रूप में, तो फिर क्या होता है, उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है?
बदलाव बहुत गहरा आता है। एक अंदरूनी शक्ति महसूस होती है, एक स्थिरता, एक निर्भयता।
डर कम हो जाता है?
हाँ, क्योंकि जब पता है कि मैं मरने वाला तत्व हूं ही नहीं, तो मौत का डर कैसा? छोटी मोटी चिंताएं, वो जो हीन भावनाएं होती है ना, मैं कम हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो सब, और स्वार्थ की बातें, वो अपने आप छूटने लगती हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं ना,
बिल्कुल
वैसे ही। और उनकी जगह क्या आता है? उदारता, दया, सच्चाई, विशालता, ये गुण खुद ब खुद पनपने लगते हैं। लेखक कुछ वाक्य दोहराने को भी कहते हैं इसे पक्का करने के लिए, जैसे मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ, या मैं अविनाशी हूँ।
अच्छा, तो कुल मिला के इस सारी बातचीत का सार क्या निकला, निचोड़ क्या है?
निचोड़ यही है कि आत्म स्वरूप की पहचान, मतलब खुद को जानना, ये कोई दिमागी खेल नहीं है।
हाँ, ये सिर्फ सोचना नहीं है,
नहीं,
ये एक भीतरी अनुभव है,
एक एहसास है। और कुंजी क्या है? मैं को इस शरीर से, इस बाहरी दुनिया से अलग महसूस करना,
एक स्वतंत्र शक्तिशाली अमर चेतना के केंद्र के रूप में।
बिल्कुल वही।
ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात
जी।
और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
हाँ जरूर।
कि अगर हम अपने रोज के अनुभवों को, हर छोटी बड़ी घटना को इस नजरिए से देखना शुरू करें कि मैं वो केंद्र हूँ, वो चेतना हूँ, और ये सब परिस्थितियाँ मेरे चारों ओर हो रही हैं,
बजाय ये सोचने के कि हम परिस्थितियों में फंसे हैं या उनके शिकार हैं।
हाँ ठीक कहा, बजाय इसके कि हम खुद को उनसे बंधा हुआ या परिभाषित महसूस करें, अगर ये नजरिया अपनाएं तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी प्रतिक्रियाओं में और हमारे मन की शांति में क्या फर्क आ सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत दिलचस्प सवाल है, सोचने लायक। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
धन्यवाद।